නමෝ භගවතේ වාසුදේවාය ඕම් නමෝ භගවතේ වාසුදේවාය ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके ग्रंथराज श्रीमद भागवत से पठन स्कंद 5 अध्याय 19 और श्लोक संख्या 9। भारते अपि वर्षे भगवान नारायणख्य ආකල්පන්ත මුපචිත්ත ධර්ම ඥාන වෛරාග්‍ය ඈස්වරෝ උපසමෝ පරමෝ තපලබ්බන් මනුග්‍රහායාත්මබතං අනුකම්පයා තපෝ අභ්‍යක්ත ගති චරති සබ්දාර්ථ භාරතේ භාරත අපි භි වර්සේ භූභාගමේ භගවාන භගවාන नर नारायण आख्या नर नारायण के नाम से विख्यात आकल्प अंतम कल्पांत तक उपचिता वर्धमान धर्म धर्म ज्ञान ज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य संपदा उपसम इंद्रिय निग्रह उपरम अहंकार से मुक्ति आत्म उपलब्धनम आत्म साक्षात्कार अनुग्रहाय अनुग्रह हेतु आत्मबतां आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले व्यक्ति व्यक्तियों को अनुकंपया अहेतुकी दया से तपह तप अव्यक्त गति अकथनीय महिमामय चरती करता है। अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे बोले, श्री भगवान की महिमा अकल्पनीय है। उन्होंने अपने भक्तों पर अनुग्रहवश उन्हें धर्म ज्ञान त्याग आध्यात्म इंद्रिय निग्रह तथा अहंकार से मुक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत की भूमि में बद्रिकाश्रम नामक स्थान पर अपने को नर नारायण रूप में प्रकट किया है। वे आत्मज्ञान की संपदा से परिपूर्ण हैं और कल्पांत तक तप में रत रहने वाले हैं। यही आत्म साक्षात्कार की क्रिया है, यही आत्म साक्षात्कार की क्रिया है। तो जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं उन्हें नर नारायण के द्वारा ये हमें शिक्षा लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार घर बैठे नहीं हो सकता, उनको मंदिर आना ही होगा, भक्तों की संगति करनी ही होगी, प्रोग्राम सारे अटेंड करने ही होंगे, कुछ तपस्या करनी होगी। इसको सब कुल तपस्या है, ये सारी छोटी छोटी हैं लेकिन कलयुग के लिए भी बहुत बड़ी है हमारे लिए, तो इसलिए ये सब करना ही होगा हमें। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भारतवासी बद्रिकाश्रम स्थित नर नारायण के मंदिर की यात्रा करके यह जान सकते हैं कि भगवान किस प्रकार नर नारायण के रूप में अवतरित हुए और जन सामान्य को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की विधि समझाई। मात्र चिंतन तथा संसारी कार्यों में मग्न रहकर आत्मानुभूति कर पाना असंभव है। आत्म साक्षात्कार एवं तपस्या के विषय में गंभीर रहने की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग के लोग तपस्या का अर्थ भी नहीं जानते। फलतः भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पतित आत्माओं को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की सरलतम विधि बताने के लिए अवतार लिया है। जिसे चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात हृदय से मल को स्वच्छ करना कहा जा सकता है। यह विधि अत्यंत सरल है। कोई भी श्री कृष्ण संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप कर सकता है। इस युग में तथा कथित उच्च विज्ञान के अनेक रूप हैं, यथा निर्विज्ञान, मार्क्सवाद, फ्रायडवाद, राष्ट्रवाद, उद्योगवाद। किंतु यदि हम नर नारायण द्वारा बताई गई सरल विधि का अनुसरण न करके इन वादों के निर्देशानुसार अत्यधिक श्रम करेंगे तो हमारा अमूल्य मानव जीवन बेकार हो जाएगा। इस प्रकार हम ठगे जाएंगे और पथ विमुख होंगे। चलो प्रभुपाद की। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानं जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ब्रश भान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखम करोति वाचालं पंगुलंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरु दीन तारणं भूतैरमहद्वेयः इमां पुरा विभो निरमायस्येते यदमुष्य पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोलंकृ शिष्ट भगवान बचांसि मे सोलंकृ शिष्ट भगवान बचांसि मे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम इस परम पावन ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पर बोलने से पहले हम आप सभी का आशीर्वाद लेना चाहेंगे जिससे कुछ इसके ऊपर हम चर्चा कर सकें। तो यहां जम्मू द्वीप का वर्णन चल रहा है। किस प्रकार हम जानते हैं जैसे सात द्वीप है सप्त द्वीप जो प्रियव्रत महाराज थे स्वयंभु मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत महाराज ने जब देखा कि जब सूर्य उत्तरायण रहते हैं तो दक्षिण में क्या रहता है अंधकार रहता है क्यों बीच में सुमेरु आता है तो सुमेरु से क्या है तक ओ साइड में उसका प्रकाश नहीं जा सकता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया एक इतना विशाल रथ तैयार किया जो दूसरे सूर्य के समान था और उन्होंने क्या किया कि जिधर अंधकार रहता है उधर उस रथ को बढ़ाया तो इसलिए उससे अंधकार भी खत्म हुआ और साथ साथ में इतने गहरे गड्ढे हो गए उनके पहिए से जो बाद में एक समुद्र का रूप धारण किए इसलिए सात समुद्र है उसको जो है जैसे खारे पानी का समुद्र है मीठे पानी का समुद्र है सुरा का समुद्र है घी का समुद्र है दूध का समुद्र है दही का समुद्र है और गन्ने के रस का समुद्र है। जो अच्छा लगता है आप लोगों को वहां आप बास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इस सात समुद्र हुए, इसलिए सप्त द्वीप में ये परिवर्तित हो गई, ये पूरी पृथ्वी सात विभागों में वितरित हो गई। तो इसलिए यहां पर जो है, जैसे सप्त द्वीप हैं, प्लक्ष है, सामली है, कुश है, क्रौच है, साक है, पुष्कर है और जम्बू द्वीप है। तो हालांकि इनमें सातों के सात द्वीप बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत श्रेष्ठ हैं, ऐश्वर्यों से भरे लदे पड़े हैं। जैसे अभी बेर 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 आएंगे, अमरूद आएंगे, तो बेरों पे देखेंगे, बेरियों पे बेर भरे पड़े होंगे, लेकिन शायद कम है ना इस बार कुछ, जो भी है। तो वहां आप देखेंगे ऐश्वर्यों से लदे पड़े हुए हैं। भारत भूमि ही एक ऐसा स्थान है जहां सबसे कम है, पूरा ये भारत मतलब पूरा पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी को अकेला भारत भूमि और दूसरे दूसरे अलग अलग हैं। तो भारत जैसे सारे द्वीप बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें भी सबसे श्रेष्ठ माना गया है जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप है, तो जो जम्मू द्वीप द्वीप है सप्त द्वीपों में सबसे श्रेष्ठ है। और जम्मू द्वीप में फिर नौ वर्ष है, जैसे हरिवर्ष है, इलावर्त वर्ष है, केतुमाल वर्ष है, रम्यक है, हिरण्यमय है, भद्रास है, उत्तर कुरु है, केमपुरुष वर्ष के बारे में आगे हम पढ़े थे। और अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, अभी भारत वर्ष चल रहा है। तो जम्मू द्वीप श्रेष्ठ है सप्त द्वीपों में, और उसी प्रकार नौ वर्षों में कौन श्रेष्ठ है, भारत वर्ष है, जिसमें आप हम सभी स्थित हैं। तो इसलिए हम बहुत ही बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें रोना नहीं चाहिए कि हमारा अमेरिका में जन्म क्यों नहीं हुआ, तो डॉलरों में हम रहते। भारत भूमि सबसे श्रेष्ठ भूमि कहा जाता है। इसलिए भगवान नर नारायण ने जो अवतारों में, उनका चौथा अवतार आता है। पहला अवतार हुआ चतुर कुमारों का, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ठीक है ना। दूसरा अवतार हुआ बड़ा भगवान का। तीसरा अवतार हुआ नारद जी का, और चौथा अवतार हुआ नर नारायण ऋषि का। ये जो नर नारायण ऋषि हैं, नर और नारायण, तो दक्ष की कितनी कन्या थी, 27, 27 कन्या थी, जिसमें से जो है एक कन्या जिसका नाम है मूर्ति, इसको जो है धर्म के साथ शादी किया था, विवाह किया था। तो उसी के गर्भ से धर्म और मूर्ति के गर्भ से नर नारायण जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। तो ये जो नर नारायण का अवतार है, यहां जो बताया जा रहा है, वास्तव में नर नारायण तो हमें, जैसे हम जाते हैं बद्र का आश्रम, देखते हैं कि वहां तपस्या में लीन है, तो ये तो उनका एक कारण है ही है इस संसार के व्यक्तियों को इस शिक्षा देने के लिए कि आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तपस्या करना होगा, कुछ साधना भजन करना होगा। हंसते खेलते हुए किसी को भी भगवान नहीं मिले हैं, उनको जो है थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। तो इसलिए पहला अवतार तो जो ये तो कारण है ही है, लेकिन एक दूसरा भी इनके अवतार का कारण है, और वो कारण है, एक बार क्या हुआ, एक असुर था जिसका नाम था सहस्त्र कवच दैत्य या असुर। इसने क्या किया, सूर्य देव की आराधना की, तपस्या की, बहुत तपस्या की, और सूर्य को उन्होंने क्या किया, अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लिया। बोलो हरे कृष्णा। तो तपस्या से कोई भी प्रसन्न हो सकता है, या भी किसी की सेवा कर दो तो वो प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए तपस्या का मतलब है सेवा करना, बिना सेवा के कुछ मिलने वाला नहीं, केवल धक्का मिलेंगे, आते रहो जाते रहो। तो इसलिए जब सूर्यदेव प्रसन्न हो गए तो उनको आशीर्वाद दिया, भैया क्या चाहते हो बोलो। तो उस दैत्य ने कहा, हे प्रभु आप मुझसे प्रश्न है तो मेरे को क्या करो, 1000 कवच दो, और एक कवच कोई 1000 वर्षों तक मुझसे लड़ेगा तब जा करके एक कवच टूटेगा, और जैसे ही वो कवच टूटेगा वो व्यक्ति मर जाएगा जो तोड़ा है। तो सूर्यदेव ने क्या किया, उनको तथास्तु कर दिया, बोला तथास्तु। अब तो आप जानते हैं ये वरदान जब उसको मिला तो बड़ा प्रसन्न हो गया, और दैत्यों को जब कोई वरदान मिलता है, जब कोई उपलब्धि प्राप्त होती है तो उससे उनका ईगो बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, इसलिए वो क्या करते हैं, अहंकार के वशीभूत होकर के उपद्रव करते हैं। उपद्रव का मतलब होता है लोगों को कष्ट देना, और ये सबसे बड़ा कष्ट पाप है, और तो सब पाप है लेकिन सबसे बड़ा पाप है लोगों को सताना, जीवात्माओं को कष्ट देना, ये भयंकर सा पाप है। इसलिए तो कहते हैं वैष्णव जन तो तेने कहियो जो पीर पराए जाने रे। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वास्तव में इस भारत भूमि में जो जन्म लिए वो सभी वैष्णव है, उनको सभी को वैष्णव बनना चाहिए, सभी को दयालु होना चाहिए। तो उसने क्या किया, पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा दिया। तो इसलिए उसके आतंक को खत्म करने के लिए भगवान क्या किए, नर नारायण के रूप में उपस्थित हुए, प्रकट हुए। और क्या होता था, 1000 वर्ष तक एक व्यक्ति इससे युद्ध करता था, इसके कवच को तोड़ता था तो डेड प्राय हो जाता था। तो दूसरा व्यक्ति क्या करता था, मंत्रों के द्वारा इसको जीवित करता था, और फिर वो युद्ध करता था। जब फिर 1000 वर्ष तक वो जब डेड होता था तो फिर वो क्या करता था, दूसरे को जिंदा करता था मंत्र के द्वारा, और फिर वो युद्ध करता था। ऐसे करते करते और इसके कितने कवच खत्म हो गए, 99 कवच टूट गए। जब देखा का एक ही कवच बचा है तो एक क्या किया, भयभीत होकर के और सूर्य में, सूर्य देव में क्या किया, ये प्रवेश कर गया। तो उस समय नर नारायण क्या किए, चलो एक कवच है जाने दो, और वो तपस्या में फिर भद्रकाश्रम में क्या किए, लीन हो गए। इसके बाद में क्या हुआ, वही व्यक्ति फिर सहस्त्र कवच दैत्य क्या किया, कर्ण के रूप में जन्म लिया, और उस कर्ण को वध करने के लिए फिर भगवान किसके रूप में आए, वही नर नारायण, अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए, और फिर जाकर के उन्होंने उसका जो लास्ट कवच था, जो कर्ण कवच धारण करके आया था, कवच और कुंडल शरीर में उसके थे, तो जो एक बच गया था भगवान ने क्या किया, द्वापर में अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के और उसका प्राणांत कर दिया और उसका कल्याण कर दिया। तो इस प्रकार जो है नर नारायण के रूप में जो है उनके अवतार के बारे में एक जो है एक कथा है। ऐसा कहते हैं भारत भूमि जो है सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, सारे जितने भी द्वीप हैं, वर्ष हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ भारत भूमि है। क्यों भारत भूमि श्रेष्ठ मानी गई है? इसलिए श्रेष्ठ मानी गई है कि जितनी भी और दूसरी जो भूमियां हैं, जितने भी द्वीप हैं, वर्ष हैं, हालांकि वहां लोगों की आयु हजारों हजारों वर्ष होती है, हम तो 100 वर्ष भी नहीं जीते, कब जो है मिट्टी हो जाते हैं उसके पहले ही, लेकिन वो 10-10 हजार वर्ष तक उनकी आयु रहती है। एक एक वर्ष ऐसा है, वहां बीमारी नहीं, रोग नहीं, खूब भोगों का वो है। लेकिन समस्या क्या है, वहां के जो वासी हैं वो भोग भोगने के लिए आते हैं। जैसे स्वर्ग भी एक भोग भोगने के लिए है, ऐसे ही और भी और अन्य दूसरे लोक हैं जिनका यहां वर्णन चल रहा है, वो लोक भी भोग भूमि है। इस भारत वर्ष में जो है, जो भी हमने कार्य किया है, जो कुछ भी दान पुण्य किए हैं, आप पाप कर्म किए हैं, तो उसका परिणाम भोगने के लिए तो हम यही रहेंगे पाप का तो। लेकिन जब ज्यादा कुछ भोग होते हैं, स्वर्ग के लायक नहीं है लेकिन उससे थोड़े कम हैं, तो उनको क्या करते हैं, इन द्वीपों में जो है भोग भोगने के लिए उनको जन्म देते हैं। तो खासियत यह है कि हालांकि अन्य अन्य द्वीपों में और वर्षों में भोगों की बहुत प्रधानता है, लेकिन कल्याण का कहीं भी रास्ता नहीं है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। जैसे इस हॉल में उधर से सब बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए खिड़कियां, यहां जो है सबको खूब फर्स्ट क्लास खाना पीना सब दिया जाए, तो कितने दिन तक खाएंगे पिएंगे? अंत में तो एक दिन बोलेंगे भैया हमें बाहर निकाल दो ना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ऐसे ही 9 वर्षों में भोग तो बहुत दिए हैं लेकिन एक भी बाहर जाने का गेट नहीं छोड़ा है। केवल भारत भूमि एक ऐसी भूमि है, यहां जो है बड़ी आसानी से बाहर जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? देखो कोई गेट पे नहीं है, आराम से आओ और आराम से जाओ, हरि बोल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए भारत भूमि के लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमि है, इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के पावन अवतारी हैं, उनको कहना पड़ा कि भारत भूमि से हैलो मनुष्य जा, जन्म सार्थक करे कर पर उपकार। जिनका भी भारत भूमि में जन्म मिला है, वास्तव में वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको जो है जन्म सार्थक करने का बहुत बहुत अवसर दिया जाता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, जितनी भारत भूमि में भजन करने की सुविधा है, संसार के और किसी दूसरे द्वीपों में या वर्षों में कोई इतनी सुविधा नहीं है। हरि बोल, कहीं भी जाओ, इस्कॉन के मंदिर फ्री हैं, खुले हैं, बस एक जो है सिम्बल लगा लो, इस्कॉन वाले हैं, हम कहां से आए हैं, इस्कॉन वाले हैं। अच्छा प्रभु आप इस्कॉन से आए हैं, कितने दिन रुकोगे? कम से कम 3 दिन तो दो, बाकी बाद में सोचेंगे। तो 3 दिन तक खूब खाओ पियो, ये तो वृंदावन धाम है, चलो इस महीने फ्री है लेकिन अगली बार सब पर। लेकिन अन्य स्थानों में वैसे यहां भी है, अब इतनी सारी भीड़ आती है, यहां सबको फ्री कर देंगे तो एक दिन मंदिर ही कहां पहुंच जाएगा, तो इसलिए यहां कुछ थोड़ा रोक लगा करके रखते हैं। तो इसलिए भारत भूमि में जितने भजन करने की सुविधा है, संसार में और पूरे अन्य दूसरे लोकों में और कहीं भी जो है इतनी सुविधा नहीं है। इसलिए भारत भूमि को देख करके देवता लोग आंसू बहाते रहते हैं, रोते रहते हैं, अपने को ठोकते रहते हैं, हाय हाय क्या हो गया, मेरी बुद्धि पहले क्यों नहीं घूमी थी, मैं स्वर्ग में बैठा हूं, खूब भोग विलास है यहां लेकिन भजन करना कहां है, कहीं है ही नहीं। तो इसलिए देवता लोग जो है एक भारत भूमि को देख देख करके क्या करते हैं, अपने दुर्भाग्य पर कोसते रहते हैं। क्यों कोसते रहते हैं? वो देखते हैं कि भारत भूमि है, इसके मनुष्य तो पवित्र है ही है, हमसे करोड़ों गुना सौभाग्यशाली है। अरे भाई, यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियां, यहाँ के वन भी बहुत पवित्र कहे जाते हैं, इसलिए तो इस भारत को भारत माता कहते हैं। भारत माता के पाकिस्तान माता कोई नहीं कहता, अमेरिका माता कोई नहीं कहता, लेकिन भारत को ही भारत माता कहा जाता है। ये स्पेशलिटी है। और यहाँ के पहाड़ देखो, आप दूसरे अन्य उनके पहाड़ों के नाम लेते रहो तो बजाय कुछ अच्छे के बुराई होगा, लेकिन यहाँ के पहाड़ों को भी नाम ले लोगे। ऐसे कई सारे मलय पहाड़ है, मैनाक है, चित्रकूट है, देवगिरी है, श्रीशैल है, महेंद्रगिरी है। मैंने कम से कम 5-6 बार इनको नाम लिया और ले लेता हूँ बोल रहा हूँ तो। महेंद्रगिरी है, गोवर्धन है, चित्रकूट है, द्रोण पर्वत है, रेवत पर्वत है, कामगिरी पर्वत है, हजारों का उसमें कई सारे नाम दिए हैं। तो ये जो सारे पहाड़ हैं और नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, कावेरी है, सरयू है, गोदावरी है, कृतमाला है, ताम्रपर्णी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, चंद्रभागा है, मंदाकिनी है, और भी बहुत सारी नदियां हैं। और यहाँ के जंगल हैं, वृंदावन है, ठीक है ना, काम वन है, और मद वन है, बेल वन है, कुमुद वन है, भांडीर वन है, बहुला वन है, लोह वन है, चित्रकूट वन है। इनके केवल नाम लेने से ही इनका स्पर्श तो दूर रहा, आप कोसों दूर इनका नाम भी ले लोगे तो भी पवित्र हो जाओगे। हरे हरे। ये सुविधा केवल भारत भूमि में ही है। इनका नाम लेने से, इनका स्मरण करने से, इन नदियों में स्नान करने से, इनके दर्शन करने से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। सोच लो, अरे भजन तो बहुत दूर की बात है, कोई बात नहीं है, भजन नहीं किया इसलिए तो आज मैं कल से इन नामों को टट रहा हूं, थोड़ा प्रभु थोड़ा मैं भी पवित्र हो जाऊं। तो इनका अनजाने में भी नाम लेने से, वृंदावन का अनजाने में नाम लेने से पवित्र होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है, ये जो भारत भूमि है ना, जितने भी अवतार हुए हैं देखा जाए तो सारे अवतार कहां सौभाग्य मिला है, भारत भूमि में ही ज्यादातर सौभाग्य मिला है। राम है, नरसिंह है, बराह है, मत्स्य है, कुर्म है, जितने भी अवतार होते हैं मीन सब भारत भूमि में। जैसे मैया ने, यशोदा मैया ने जब बलराम को डांट मारते हुए कहा, जब कृष्ण को बांध दिया था तो बलराम को बहुत क्रोध हो गया, उसकी आंखें लाल लाल हो गई और मैया से बोला, अरे मैया तू नहीं जानती मुझे, मैं कौन हूं? मैया ने डंडा उठाया, तू कौन है? तो उसका पारा आधा डाउन हो गया। तो उन्होंने कहा मैं शेष हूं। अच्छा तू शेष है, और ये तेरा छोटा भाई कौन है? तो बोले स्वयं भगवान है, और यही अनेक रूपों में जो है अवतार लेते हैं। मैया ने फिर वो छड़ी थोड़ी ऊपर की तो उनका पारा और डाउन हुआ, और उन्होंने कहा सारे अवतार मेरे ही घर में भर पड़े हैं, और कहीं ठिकाना नहीं मिला तुम्हें जो है अवतार लेने का। सोचो ये भारत भूमि है। तो इसलिए देवता लोग अपने को कोसते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अहो अमीसाम किम अकारि सोवनम प्रसन्न एसा स्विद्वित स्वयं हरि यही जन्म लब्धम नृसुभारताज्रे मुकुंद सेवो पयिकं स्प्रहाहिन। देवता बोलते हैं कि अरे भैया हो, अहो अमीसाम किम अकार शोभनम, किम अकार शोभनम अमीसाम, इन भारतवासियों के सौभाग्य को तो देखो, इन्होंने न जाने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया है, कौन सी तपस्या कर दी है, दान दे दिया है, क्या किया है, कि प्रसन्न ऐसा स्वित स्वयं हरि। भगवान हरि इन पर कैसे रहते हैं, हर समय प्रसन्न रहते हैं। प्रहलाद बोलते हैं कि भैया हो, तुम्हें हरि को ज्यादा प्रसन्न करने की जरूरत, कुछ करने की ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही प्रसन्न है हमारे ऊपर, बस थोड़ा पत्रम पुष्पम फलम तोयम थोड़ा भी अर्पण कर दोगे तो भगवान जो है पूर्ण रूप से बरस पड़ते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ज्यादा तपस्या करने की भारत भूमि में जरूरत नहीं है। इसलिए कई सारे संतों ने, आचार्य ने कहा है कि नन्नारायण ने देखा कि भाई भारत के वासी ज्यादा तपस्या तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे ही दुबले पतले गिरे मरे हुए हैं, इनकी स्थिति देखकर को उनको बड़ा तरस आया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम तपस्या करते हैं, लेकिन तुम क्या करो, वहां आकर के हमारे दर्शन कर जाओ, दर्शन करने से ही तपस्या का फल मिल जाएगा। हरि हरि। तो इसलिए हमारी तरफ से वो तपस्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अब जाके सो जाना चाहिए, अब तो अच्छा हुआ, नहीं तो बड़ा टेंशन हो गया था। तो कुछ तो हमें करना ही चाहिए। तो देवता लोग बोलते हैं कि भगवान हरि इन पे तो जो है जन्म से ही, जन्म लेने से इन पर प्रसन्न हो गए, इनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही जन्म लब्धम नृस्वभारुता जिरे, कब प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे इस भारत भूमि में हमारा जन्म हो जाता है उसी समय भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो इसने भारत भूमि में जन्म ले लिया है, अब मैं इससे प्रसन्न हूं, बस थोड़ा हाथ पैर चलाओ फट सुनाई चले जाओ भगवान के धाम में, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भाई तुम्हें क्या समस्या है, मानो देवराज इंद्र से पूछा जाए कि तुम क्यों इतना कष्ट, किसी के भाई अच्छे पे तुम आंसू बहा रहे हो, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है। तो बोलते हैं, रो रो करके बोलता है, क्या करूं मैं तो मुकुंद सेवा यकम इस प्राहाइना। तो देवराज इंद्र जो है रो रो करके बोलता है, क्या करें, भारत वासियों को तो जन्म लेते ही भगवान राम कृष्ण के बारे में बताया जाता है, उनकी मम्मी बताती है, उनके दादा बताते हैं, उनका परिवार वाले कोई ना कोई बताते रहते हैं, लेकिन हमारा ये धिक्कार है जन्म लेना उस स्वर्ग लोक में, कितनी कितनी हमने तपस्या किए, दान किए, क्या क्या नहीं किया, और वहां जाकर के हम पहुंचे हैं जहां जाकर के मुकुंद सेवा की इस प्राही हमारे अंदर नहीं होती है कि चलो थोड़ा भजन करना है तो थोड़ा जप कर लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो इंद्र बेचारा रो रहा है, क्या करे, यहाँ तो भजन करने के लिए कोई मंदिर भी तो है नहीं, कम से कम वृंदावन होते तो इस्कॉन का मंदिर था, वहां कम से कम मंगलावती अटेंड कर लेते थे। तो सोच लो, देवता भी आंसू बहाते रहते हैं, रोते रहते हैं, कभी कभी तो इतने गुस्से में आ जाते हैं, ये बदमाश भजन कर रहा है, मुझसे आगे निकलना चाहता है, तो उसको कभी कभी तो इतना समस्या में डाल देते हैं वो केवल ईर्ष्या से। हम लोग इतना तपस्या किए, भजन किए, दान दक्षिणा किए, तब जा करके हमें स्वर्ग मिला है, लेकिन ये तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कभी बोल कर लिए होंगे हरे कृष्ण बाकी तो जो है अब तो इनको भारत भूमि में जन्म मिल गया, अब तो इनका कल्याण होना ही होना है, अब इनको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उनको बोलते हैं कि हम आगे निकलना चाहते थे लेकिन सबसे पीछे रह गए, और इन्होंने कुछ नहीं किया, सबसे पीछे थे, ये सबसे आगे निकल गए। तो इस भारत भूमि पे हमें गर्वित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान नारायण, हालांकि वो तो महादयालु है ही, हमारी तरफ से तपस्या कर रहे हैं, इसलिए हमें उनके लिए ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको करने देना चाहिए,
एक बार इंद्र ने जाकर के उनको भी डिस्टर्ब करना चाहा, और उन्होंने देखा कि ये नन्नारायण चलो अपना कल्याण कर ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सारे भारतवासियों को उद्धार करके ही छोड़ेंगे, इसलिए इनकी तपस्या को क्या किया जाए, हाँ भंग कर दिया जाए। तो इसलिए उनको ईर्ष्या हुई तो उन्होंने क्या किया, कामदेव को भेज दिया, अप्सराओं को भेज दिया, बसंत ऋतु को भेज दिया और हवा को बोल दिया जाओ भाई ज्यादा तेजी से नहीं बहना, धीरे धीरे बहना, खुशबू से बहना, खुशबूदार। तो जाकर के बद्र का आश्रम, और वहां जाकर के जो है कामदेव ने अपनी मंडली को तैयार किया, और मंडली तैयार होकर के जो है हवा बहने लगी, मंद सुगंध समीर बहने लगी, और जो है अप्सराएं नृत्य करने लगी, बसंत ऋतु छा गई, चारों तरफ खुशबूदार कमल पुष्प जो है नाना प्रकार के वृक्ष फल फूलों से लद गए, और जो है जब नृत्य अप्सराएं नृत्य कर रही थी, मृदंग करताल ड्रम आदि ले ले करके वहां सब चालू हुआ, कीर्तन चालू नहीं हुआ, ये उनकी गलती थी। और उन्होंने जो अपना बेचारे का जो जितना भी कला आती थी सारी ताकत झोंक दे भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए, उन अप्सराओं के प्रति आकर्षित करने के लिए। बेचारी अप्सरा भी खूब मेकअप की थी उस दिन, तो पूरा लेख पोत करके पूरा बेचारी गई जैसे तैसे, लेकिन लेकिन लग गया, इतना मेहनत किया, खूब ड्रम वाले से कहा जोर से बजा, हवा से कहे थोड़ा जोर से सब, और वो भी बेचारी पीट रही थी पैर घुंघरू जिसमें बंधे थे, पीट पीट करके खून निकलने लग गया, लेकिन भगवान पे कोई असर नहीं पड़ा। तो उन्होंने बेचारी ने रोते रोते कहा प्रभु प्लीज मार करके छोड़ो, वो क्या हमें हमारी नौकरी जाएगी, आप कम से कम आंख तो खोल लो हमारे ऊपर। तब भगवान ने आंख अपनी खोले, और आंख खोली लेकिन क्रोध से नहीं खोली, ये भगवान की नर नारायण की खासियत है। शिवजी भी जो है कामदेव को जला दिए थे, शिवजी क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिए, लेकिन अपने हृदय का जो क्रोध था वो उनसे भस्म नहीं हो पाया। लेकिन इधर भगवान नर नारायण इतने बसल भाव में, उनकी आंखें थी बिल्कुल खिले हुए कमल की तरह, अग्नि नहीं बरस रही थी उनमें से चंद्रमा की जैसे चांदनी शीतलता बरसती है, ऐसे भगवान की आंखों से शीतलता बरस रही थी। और जैसे ही भगवान ने आंखें खोली तो बेचारे उनके तो पसीने निकल गए कि अब क्या होगा। एक बार तो बेचारे शिव जी से जो है जैसे तैसे हमारी जान बची, मार दिए थे वो जिंदे हो गए हैं, अब दोबारा इसलिए काम देखा तो पसीना ही छूट गया, उन्होंने कहा अब फिर गया मैं, एक बार तो शिव जी से गया है, दूसरा इनसे गया। लेकिन भगवान ने देखा इनके मुख मलिन हो गए, मतलब फीके पड़ गए, भय से कांपने लग गए थर। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों को कांपने की जरूरत नहीं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आप लोग आए हैं बहुत अच्छा किए, आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव है, इसलिए बताओ मैं आपका कैसे स्वागत कर सकता हूं। भगवान ने बहुत अच्छा स्वागत किया, और उन्होंने कहा कि कामदेव तुम प्रसन्न रहो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने क्या किया था, अपने शरीर से असंख्य अप्सराएं पैदा कर दी, जो अप्सरा एक एक अप्सरा कैसी थी, एक एक लक्ष्मी के समान सुंदर थी, उनका रूप लावण्य भाषा शरीर से क्या निकल रही थी, खुशबू निकलती थी, दुर्गंध नहीं निकलती थी, ये उनकी खासियत थी, खुशबू निकलती थी। बेचारा कामदेव तो आंख पर चश्मा को बार बार ऊपर नीचे करके देख रहा था, ये मैं क्या देख रहा हूं, और उनकी जो अप्सरा थी बेचारी उनके तो कुछ कह ही नहीं सकते, पसीना और छूट गए, ये कौन हमसे भी ज्यादा सुंदर, अपने मेकअप में देख लेती थी है वो, पहुंचती थी बार बार कहीं क्या हो गया ये। तो कहने का आशय है कि भगवान ने उन अप्सराओं को प्रकट कर दिया, और अप्सराओं को प्रकट करके कहा भैया कामदेव आप क्या करो, इसमें से एक अप्सरा चुन लो और इंद्र को हमारी तरफ से भेंट कर देने का है। आपने अच्छे इतना बैंड बाजा पार्टी को भेजा, हमारे यहाँ अच्छा नृत्य गान किए, बहुत अच्छा लगा हमें, हमारी तरफ से उपहार या पुरस्कार है इसका। तो उन्होंने जो है एक अप्सरा को चुना जिसका नाम था उर्वशी है, उर्वशी को उन्होंने गिफ्ट कर दिया। और जो उर्वशी क्या है, स्वर्ग का जो है शान है, स्वर्ग की सुंदरता को जो है उर्वशी के कारण हजारों गुना उसकी बढ़ गई है। तो इससे हम देख सकते हैं कि भगवान नंद नारायण कितने कृपालु हैं, जो उनका अहित करना चाहता था, जो उनको तपस्या से भी जो है नीचे करना चाहता था, उनके ऊपर भी भगवान इतने प्रसन्न हैं। तो जो प्रसन्नता पूर्व जो उनको प्रसन्न करना चाहता है, जो उनको प्रणाम कर देता है, जो उनके दर्शन के लिए वज्र का आश्रम जाता है, तो उनके बारे में तो फिर कहना ही क्या, उनके ऊपर तो भगवान की है वर्षा बहुत तेजी से होती है। बोलो नंद नारायण भगवान के। तब जो है बहुत से सोचे कि भाई कौन इतनी पहाड़ियों में जाएगा, इतना बड़ा कष्ट, अरे बहुत मुश्किल है। और फिर केदारनाथ जैसा हो गया तब तो मालूम नहीं हम कहां चले जाएंगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, 6 महीने हम देते हैं आप लोगों को, 6 महीने में एक बार आ जाया करो। 6 महीने मतलब साल में 6 महीने तक पूजा पाठ चलेगी। इसलिए ऐसे ऐसा बोलते हैं कि कार्तिक से लेकर के, कार्तिक से लेकर के चैत्र तक, कार्तिक से लेकर के चैत्र तक भगवान के पट क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। इस समय जो है पुजारी बर्फ के डर से और पट को बंद करके दीप जला करके और क्या करता है, नीचे आ जाता है। तो उस समय वो जो 6 महीने जब पुजारी नहीं रहता है तो उस समय फिर पूजा का काम उस दायित्व को कौन संभालता है, नारद जी संभालते हैं। 6 महीने जो है वो करते हैं। इसलिए जो अखंड ज्योति जो जलती है वो तो एक बार दीप जला करके आ जाती है, लेकिन 6 महीने तक कौन उसमें तेल डालता है, घी डालता है, नारद जी उसको जो है घी डालते रहते हैं। तो 6 महीने जब पट खोले जाते हैं तो ज्योति क्या करती है, जलती ही मिलती है। तो इस प्रकार जो है कार्तिक से लेकर के चैत्र तक भगवान के 6 महीने बंद रहते हैं और बैसाख से लेकर के अक्षय तृतीया तक, नहीं बैसाख अक्षय तृतीया से लेकर के क्वार तक, क्वार कार्तिक में बंद होते हैं तो क्वार तक दर्शन खोलते हैं बैसाख की अक्षय तृतीया को, तो ये क्वार तक जो है ये फिर दर्शन भगवान के खुले रहते हैं। तो इसलिए इन 6 महीने में जो है, अब तो उन्होंने देखा आप बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ में भी कुछ चढ़ना पड़ता है, गंगोत्री में भी कुछ चढ़ना पड़ता है, मुखारबिंद तक जाएंगे, जमुनोत्री में भी कुछ चढ़ना पड़ता है पैदल, लेकिन बद्रीनाथ में तो उससे मालूम चलता है वास्तव में कितने मर्सीफुल हैं। बद्रीनाथ में तो सीधे यहां से बस में बैठो और कहां उतरो, उनके मंदिर के सामने उतरो जाकर के। ए बद्रीनाथ भगवान की कृपा है, बोलो बद्रीनाथ भगवान की। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट में हम समाप्त करते हैं तात्पर्य में। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में आत्म साक्षात्कार एवं तपस्या के विषय में गंभीर रहने की बहुत ही बहुत आवश्यकता है। जब देखा कि इतना व्यक्ति भी ये नहीं जानता है कि वास्तव में तपस्या क्या है, उनका मतलब होता है कि एक दिन केवल अन्न नहीं खाया है, वो बोला व्रत रखा है। भाई कैसे व्रत रखा है, बोला 1 किलो दूध पिया, 1 दर्जन केला खाए और जो है 1 लो क्या नाम है ड्राई फ्रूट खाए का 1/2 किलो और वैसे मेरा फास्टिंग है, नो फूड है, आज व्रत रखा है। एक नहीं, एकादशी के दिन खूब फीस्ट खाते हैं और उसमें भी हम बड़े गर्व से कहते हैं क्या किया है आज हमने, अजी आज हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं। अरे भाई हम तो कहते हैं डेली ऐसी एकादशी हो, इतना सुंदर प्रसाद मिलता है। तो यही हम लोग सोचते हैं ये तपस्या है, लेकिन हमें बहुत सीरियस होने की जरूरत पड़ती है। लेकिन महाप्रभु ने देखा कि ये सीरियस होने वाले नहीं है, तो इसलिए महाप्रभु देखे कि चलो भाई अब ये तो सीरियस होंगे नहीं, हम ही सीरियस हो जाते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और मर्सीफुल होकर के संसार के अंदर प्रकट हुए, और उन्होंने कहा भाई कुछ मत करो, व्रत रख लो, अच्छी बात है, खा पी करके भी रखो, जैसे भी रख लो, थोड़ा सा एकादशी का तो रख लो भाई, और कुछ कुछ तो रख लो थोड़ा बहुत, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ भी बनेगी। वो आपको क्या करेगा, आपको जो है हेल्थ से आपको जो है वो बोध लाएगा, आपको जो हेल्थ को स्वस्थ रखेगा। व्रत रखने से हेल्थ हमारी इंप्रूव होती है, अच्छा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए उन्होंने कहा थोड़ा सा तो रखो, और बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हो तो केवल क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना कर लो घर में बैठे बैठे। और मैं आऊंगा और आप लोगों को लेकर के क्या करूंगा, अपने लोक को चला जाऊंगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के, तो इसलिए देखा कि भाई प्रभुपाद फिर और मर्सीफुल होकर के आए। उन्होंने देखा कि भारत में तो ठीक है, लेकिन अमेरिका में जो बैठे उनका कैसे कल्याण होगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो मैं खुद जाता हूं अमेरिका। और वहां जा करके उन्होंने क्या किया, सभी को महामंत्र दिया, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। इस प्रकार जो है इतना आसान बना दिया है, घर में बैठ जा करके भक्त लोग हरि नाम दे रहे हैं, तो सोच लो इस भारत भूमि में ही ये सुविधा है। और इतनी सुविधा पाकर के भी जो जो है अभी तक सोए हुए हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मानव जीवन जो लोग इन बातों के चक्कर में पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के इन बादों के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनका तो जीवन क्या है, बिल्कुल बेकार है। इस प्रकार वो ठगे जाएंगे और पथ विमुख हो जाएंगे। इसलिए हमें किसी बात के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस सिंपल भाषा में चांट एंड बी हैप्पी, बस जप करो और जो है फेस्टिवल में खूब फीस्ट खाओ और घूमो नाचो और भगवत धाम चले जाओ। ये बताइए हरि भो है कि नहीं, कितना आसान कर दिया है, वो सब भी मनाओ और भगवत धाम भी जाओ। तो ये जो है भारत भूमि में ही सुविधा है, इसलिए भारत भूमि के लिए हम नमन करते हैं। बोलो भारत माता के, और भारत भूमि के जो आराध्य देव हैं नंद नारायण ऋषि, उनको नमस्कार करते हैं, नंद नारायण भगवान के, और उनके जो पुजारी हैं श्री नारद जी, उनके लिए हम नमस्कार करते हैं, नारायण नारद जी ऋषि के निदाई गौर प्रेम नंदे जगत ऋषिल प्रभुपाद के। तो इस प्रकार हमें भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण।